بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم فرمودہ ایک دعا جس کو میرے شیخ اکثر سنایا کرتے تھے کہ یا حی یا قیوم، اے زندہ حقیقی اپنی ذات سے قائم اور اس قیوم کی صفت یہ کہ خود بھی قائم اور اس عالم کو اور کائنات کو قائم فرمانے والے ہیں، خود بھی قائم. برحمتی کا استغیث، آپ کی رحمت سے فریاد ہے. اصلح لی شانی کلہ، ہر بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما دے. حضرت اس طرح ترجمہ فرماتے ہیں، اصلح لی میری شانی، میری بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما دے. اور ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یہ ہے پہلے جامع تھا اب معنی بھی آ گیا نا، کہ اصلح لی شانی کلہ، میری بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما دیجئے، درست فرما دیجئے. اور یہ جامع ہو گیا، اور معنی یہ ہوا ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا. حی اللہ تعالی کی صفت ہے، زندہ حقیقی سے میرے شیخ اس کا ترجمہ فرماتے تھے اردو میں. اور حضرت نے سکھایا کہ فرمایا غالبا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حی ای ازلن ابدن، سبحان اللہ کیا ترجمہ ہے، یعنی کیسے زندہ ہے، ازلی بھی ہیں ابدی بھی ہیں. اور ازلیت اس چیز کا نام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہو، اور ابدیت اس چیز کا نام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے، سبحان. اس سے زیادہ ہماری عقول تحمل نہیں کر سکتی اللہ تعالی کی اس حقیقت کو، اور اللہ تعالی کی اس عظمت کو، اور حی کی اس صفت کی، کیونکہ وہ تو غیر محدود ہے، اور ہم اپنی محدود عقول کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے کتنا پیارا، کیا علماء کی شان ہوتی ہے، دیکھا دو لفظ میں ایسی بات سمجھا دی کہ بس ختم شد. واللہ عالم بالصواب، ازلن ابدن، بس یہ دو لفظوں میں حقیقت کی، حیات حی کی حقیقت کو سمجھا دیا، ازلن ابدن. وحیات کل شیء بھی مؤبدن، کائنات کی جتنی زندگی اور حیات کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالی کی اس صفت حی کی محتاج، اور اس صفت حی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس تمام کائنات کو حیات عطا فرمائی. اور اپنی صفتی سے اللہ تعالی جنت کو ہمیشہ قائم فرمائیں گے، اور اہل جنت وہ ابدی ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالی کی صفت کا سبقہ ہوگا، ازلی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی نے جنت اور اہل جنت کو ابدی کر دیا، ابدا خالدین فیہا ابدا، لیکن ازلی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، ابدیت میں بھی شریک نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان سے مل جانے کی وجہ سے وہ ابدی بن گئے، ورنہ ان کی اس شان میں کوئی شریک نہیں ہے. کیونکہ جتنی بھی ابدی چیزیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی محتاج ہوں گی، تب وہ ابدی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نظر عنایت ہٹا دے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور قیوم کے معنی اے قائم بذاتی، जो अपनी जात से कायम हो। गोया इस बात की नफी हो गई कि अल्लाह ताला को कायम रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है कि जी अगर हमारा तो हाल जैसे है, हम खाना ना खाएं तो हमारी सेहत कमजोर हो जाती है, हम फलाना काम ना करें तो फला काम हो जाता है, फला बात ना करें तो फला हो जाता है, जी सर्दी है गर्म कपड़े ना पड़े तो नजला हो जाता है, ठंड लगने लगती गला खराब हो जाता है। तो क्योंकि हम मोहताज हैं और अल्लाह ताला मुस्तगनी है, इसलिए अपनी कयूम की सिफत में ये बात है कायम बिजाती, जो खुद अपनी जात से कायम, और हमें जरूरत होती है सहारे की, हमें जरूरत है सहारे की, मुख्तलिफ सहारे, चाहे वो मखलूक से लेने हो चाहे खालिक से, बरहम मोहताज है। और वो युकव्विम गैरहु बिकुदरती, और गैर को भी कायम फरमाते हैं, न सिर्फ ये कि खुद कायम और लेकिन सुभान अल्लाह उनकी उनके लुत्फ और इनायात को देखिए कि खुद भी कायम और दूसरों को गैर को दूसरे को भी कायम फरमाते हैं अपनी जबरदस्त कुदरत से। वो युकव्विम गैरहु बिकुदरती, तो गैर को भी अपनी कुदरत से कायम फरमाते हैं, जैसा आलम है सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद फरमाते 24,000 मील का गोला जिसमें पहाड़ मादनियात पानी का कितना वजन होता है, पानी का कितना वजन होता है, ये तमाम चीजें, फिर मादनियात इंसान, लिफ्ट भी जो है वो 100 की लिखा होता है 100 kg या 500 kg, 5% वजन पूरा हुआ कहती है टूट घंटी बज जाती है। अल्लाह ताला ने की कुदरत देखी कि ये कायनात को इस जमीन को अल्लाह ताला ने पहले पहाड़ों का वजन, पानी का वजन, मादनियात का वजन, फिर इंसानों का भी वजन, लेकिन और फिर मजे की बात कि अल्लाह ताला ने अपनी जमीन के गोले को जो पैदा फरमाया तो इस गोले के लिए कोई सहारा नीचे नहीं रखा, ये बैल के सींगों पर नहीं है या किसी पिलर और खंबे पर और सुतून पर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत पर कायम है, अल्लाह ताला की कब्जा कुदरत में है। और अजीब बात है कि ये जमीन हरकत करती है, लेकिन ऐसी हरकत है कि हमें पता भी नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है कि यहां बैठे मस्जिद उस्मान गनी में फजर पड़ने आए, मस्जिद मजलिस में बैठे लुड़के तो जनाब पता चला कि यूरोप पहुंच गए, यूरोप वाला लुढ़क के वो यहां आ गया, ऐसा नहीं। सुभान अल्लाह क्या कुदरत है, दुनिया में आप आहिस्ता से भी कोई चीज चलाए ना आप हरकत नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ऐसा महसूस होता है, पता चलता है जमीन की हरकत, जमीन की हरकत को अब साइंसदान भी समझने लगे कि जमीन हरकत करती है, लेकिन इनकी हरकत में भी बरकत हो जाए, इनकी अकलों में नूर आ जाए और इस तहकीकात के जरिए से खालिक को पहचान ले, इस तहकीकात से खालिक को पहचान ले, तो फिर देखिए कि क्या सुभान अल्लाह इनकी तहकीकात इनको किस उरूज पे पहुंचाती है और पहुंचाएगी। तो कयूम दो सिफत हो गई, या हय्यू या कयूम, ए जिंदा हकीकी अपनी जात से कायम और गैरों को सहारा देने वाले, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद फरियाद है बिरहमती का अस्तगीस, अल्लाह ताला की, मेरे शेख की ये तकरीर है, फरमाते अल्लाह ताला की रहमत की अदालत में इस्तगासा दायर किया जा रहा है, फरियाद दायर दाखिल की जा रही है, अदालती लफ्ज, अदालतों में यही लफ्ज बोला जाता है इस्तगासा, ये सीखा इसी से कि मजलूम ने इस्तगासा दायर कर दिया, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम की भी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर, बिरहमती का अस्तगीस। और मजे की बात यह कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज सिखा दी कि किसी वकील की जरूरत नहीं है, तुम खुद मांगो, अदालत से खुद राबता करो, तुम्हें वकील की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम है, आपने 14 ये आज ऑनलाइन पर आए, 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लम के जरिए ऑनलाइन सिस्टम दे दिया, ये आज लेकर आए, ये आज 4G लेकर आए, 4G आज लेकर आए, 4L हमारे पास पहले से थी। क्यों 4L पहले से क्यों थी? कि जी को कंट्रोल करने के लिए, देखो होशियार है ना, L मौजूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह, कायनात के कितने बड़े सिस्टम एनालिस्ट के आपने पहले ही सिखा दिया ऑनलाइन निजाम, अल्लाह से मांगो, कैसे? बिरहमती का अस्तगीस, उनकी रहमत की अदालत का दरवाजा खटखटा, और मजमून भी बना के दे दिया, देखो ऐसे फरियाद करो, तुमको फरियाद करना ना आएगी, हम सिखा रहे हैं। जो माओ जो छोटे छोटे शीर खार बच्चों को दूध पीना सिखाता है, अल्लाह वही मौला अपने बंदों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस्तगासे का मजमून, फरियाद का मजमून भी अता फरमा रहे हैं कि तुम्हें जरूरत किस चीज की है, उनकी रहमत की अदालत से क्या मांगोगे, क्या फरियाद करोगे। अब दो बातें जामे और माने हो गए, ये बलागत देखिए सुभान अल्लाह, के असलीह ली शानी कुल्ला, मोहताज है, चूंकि हम सरापा बंदे हैं, हमारी हर अदा बंदगी के दायरे में है, लिहाजा हमारी बंदगी की हर अदा की इस्लाह फरमा दीजिए, काबिले रहमत बना दीजिए। बिरहमती कैसे गोया पता चला कि हमारी बंदगी की हर इस अदा को काबिले रहम बना दीजिए, कैसा ना हो कि कोई ऐसी हरकत हो कि जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला के अजाब के मुस्ताहिक बने। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अजीब सिखाया कि हर अदा को काबिले रहम बना दीजिए, हर अदा पे रहम हो, चाहे मेरी नजर हो, चाहे मेरी सोच हो, चाहे मेरा ख्याल हो, चाहे मेरा सुनना हो, सूंघना हो, बोलना हो, छूना हो, पकड़ना हो, चलना हो, हर अदा। इसलिए आप देखिए हर अदा के लिए सुन्नतें सिखाई गई, खाना खाना लिबास है, शादी है, ब्याह है, चलना है, लेकिन चलना सिखाया, बोलना सिखाया कि क्या बोलो, कैसे बोलो, लहजा कैसा होना चाहिए, माँ बाप के सामने देखिए कितनी तफसील दी, फला तकुल लहुमा उफ, गोया की तकलीफ होगी उफ भी मत बोलो, वला तनहरुमा झिड़को भी मत, और वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब उनसे गुफ्तगू करो तो नरम गुफ्तगू करो। अब आप बता दीजिए अल्फाज पर कितनी पकड़, अल्फाज नहीं लहजे पर भी पकड़, कि अपने बड़ों से जब गुफ्तगू करो तो देखो ऐसा नहीं, जरा अल्फाज का भी ख्याल करो, और फिर उसके बाद अपनी लैंग्वेज और अपनी जबान को तो काबू करना ही है, अपने जिस्म को भी काबू करो, जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, वक्फिर लहुमा जनाहज़ुल, अपने कंधों को भी झुका के रखो। अब आप बताइए बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये सिला सुनी है ना, बॉडी लैंग्वेज कि जिस्म की हरकत बताती है, कि बहुत कुछ जाहिर करती है जिस्म की हरकत, लेकिन अल्लाह ताला ने कितना फरमाया कि वक्फिर लहुमा जनाहज़ुल, के अपने माँ बाप के सामने अपने कंधों को भी नरम रखो, सुभान अल्लाह। इससे पता चला और कि इस्लाम ने कितनी अजीब, कैसी शरीयत ने एक एक चीज पे नजर रखी, बोलने पे, चलने पे, हर चीज पर, सुभान अल्लाह। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो सुन्नत है कि मुस्कुराते रहना, उसका रंग ही कुछ और है, कि मुस्कुरा कर मिले तो कैसा एक रंग बदल जाता है, सुभान अल्लाह। तो बॉडी लैंग्वेज भी सब चीज कंट्रोल की जा रही है, कि हमारी हर अदा तरक्की इससे होगी। मौलवियों को बुरा भला कहने से तरक्की नहीं होगी कि जी मौलवियों ने औरतों को जो है वो कैद करके रखा है, कहते हैं दाढ़ी रखो, शलवार टखने से ऊपर को, इससे तरक्की नहीं हो रही। खुद दिन सारा दिन पड़े सोते रहते हैं, रातों को देर तक जागते रहते हैं, घंटों टीवी के सामने वक्त गुजारते हैं, और जनाब जो बात करें तो झूठ बोलेंगे, मामला करेंगे तो पूरा ना करेंगे, अमानत में खयानत करेंगे, सदाकत का नामो निशान नहीं है, और तरक्की की राह में रुकावट कौन है? मौलवी। ग्राहक कोई आया, ग्राहक से बात भी ढंग से नहीं करते, वो भी मौलवी का कसूर है। हाँ सूद चाहिए बस, बैठ के बातें बनानी है, तो बातों से बात नहीं बनती, बातों से बात नहीं बनती, अमल से बनती है। मामलात दुरुस्त करें, तरक्की तो होती है मामलात की दुरुस्तगी से। अब मामलात दुरुस्त ना हो तो कैसे काम बनेगा। तो बंदगी की हर अदा की इस्लाह, चाहे वो अकाइद से मुताल्लिक हो, तौहीद अकाइद, और चाहे वो इबादात से मुताल्लिक हो, चाहे मुआमलात मुआशरत और अखलाकियात। यानी एक मोमिन जो है वो कामिल बंदा हो, मोमिन जो हो वो अपनी अदाए बंदगी में कमाल को जाए, कमाल की तरफ बढ़े। इसी का नाम तो इस्लाह है, इसी का नाम तो तरक्की है, कि अपनी अखलाकी बुराइयां और अपनी कोताहियां और खामियां और कमियां, उसको उसका इदराक और एहसास होना और फिर उसकी दुरुस्तगी की तरफ जाना, इसको कहते हैं इस्लाह। और जिसका पहला दर्जा है कि उसका एहसास हो कि मैं गलत काम कर रहा हूं, ये भी बड़ी चीज है, ये भी बड़ी है। फिर आगे आगे पहला दर्जा ये है, मान ले, पहले मान तो ले, आधा आधे से ज्यादा काम तो यही हो जाएगा। अगर कोई आदमी एतराफ गलती भी कर ले तो आधा से ज्यादा काम, 75% तो काम समझे यही हो गया, बल्कि 80% यही हो गया एतराफ गलती। आगे फरमाया वला तकिलनी ला नफसी तरफत आई, अब एतराफ गलती, एहसास हो कि मैं काम गलत कर रहा हूं। नफ्स कहता है देखो अगर तुमने इकरार कर लिया ना तो तुम तो तुम्हारी तो सुबकी हो जाएगी, सुबकी, तुम जलील हो जाओगे, तुम्हारी रुसवाई होगी, तुम्हें लोग हकीर समझेंगे। तो बाद ये जो नालायक हरकत हम कर रहे हैं, हकारत तो खुद ही उससे दिल में आ गई। इंसान अब जब तकब्बुर करता है तो अपने को अपनी नजर में बड़ा समझता है, और फिर हमाकत दर हमाकत ये होती है कि अव्वल हमाकत तो यह है कि अपने को बड़ा समझता है हालांकि बड़ाई के लायक ही नहीं है, और फिर हमाकत दर हमाकत यह है कि ये समझता है कि लोग भी मुझे बड़ा समझते, ये उससे बड़ी हमाकत है। और कराची की जबान में इसके लिए दूसरा लफ्ज है, वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन समझ तो गए होगे ना। और उसके साथ अगर महा लगा दें तो बात समझ में आ जाएगी। एक होता है मोतिया, एक होता है महामोतिया। तो ये महामोतिया, एक तो हमाकत है, ये बड़ा है नहीं, अपने को बड़ा समझ रहा है, हमाकत है ये। और हमाकत पर हमाकत क्या है, महामोतिया जिसको कहते हैं, वो ये कि लोग समझ रहा, लोग भी मुझे बड़ा समझते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में आता है कि उसकी हैसियत लोग की नजर में कुत्ते और खिंजीर की भी जैसी नहीं होती। हत्ता अहवाना अलैह, इनसे भी गया गुजरा होता है, कुत्ते और खिंजीर से भी ज्यादा। कल्ब और खिंजीर का नाम लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि कुत्ते और सूअर से भी, खिंजीर से भी ज्यादा ये लोगों की नजर में इसकी होती है। ये है अपने को बड़ा समझने वाला और तकब्बुर करने वाला, और नफ्स यही सिखाता है, तुमने गलती का इतराफ कर लिया तो कैसे काम बनेगा। यही तो चीज है अपने को मिटाना, और आजजी नफ्स है, नफ्स ही के तो वो करना। और इसलिए इस्लाह नफ्स को फर्ज आयन फरमाया, कि अपने नफ्स की इस्लाह फर्ज आयन है, नफ्स की हवा निकले, पलक झपकने के बराबर भी अगर नफ्स के हवाले हुए इसने तो जलील करना है, क्योंकि नफ्स की जो गिजा है, नफ्स की गिजा वो गुनाह है, गुनाह, और गुनाहों में जिल्लत है। और रहमत की अदालत से फरियाद यही है कि अल्लाह ताला की रहमत ही नफ्स से बचा सकती है। और वो क्या तरीका है, वो तरीका ये है कि गुनाह से बचने की हिम्मत इख्तियार करें। और नफ्स कब ताबे होता है, जब रहमत तो मिलती है, और रहमत कब मिलती है, जब इंसान अल्लाह वालों की सोहबत में बैठता है, उस सोहबत से अल्लाह ताला की रहमत मिलती है। जब रहमत मिलती है नतीजा ये क्या, नफ्स भी ताबे हो जाता है, नफ्स भी कमजोर पड़ जाता है। और फिर नफ्स के अंदर सलाहियत है गुनाह से बचने की, फिर नफ्स उसके हिसाब से अपने को ढाल लेता है। ये है नफ्स की खासियत। तो ये अदालती मजमून है रहमत का, सुभान अल्लाह। इस दुआ को मांगने का अहतमाम हो, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता आईन। पलक झपकने के बराबर, हजरत फरमा देखो इतना खतरनाक दुश्मन है कि पलक झपकने में वार कर देता है, इतना खतरनाक। ये मोबाइल ऐसे ही खतरनाक है कि जी क्या है, मैं इंटरनेट लगा लूंगा तो क्या है। फिर क्या हुआ जी, मैं अपनी ईमेल चेक कर रहा था, बस एक तस्वीर आई, फिर मैं मुबतला हो गया और दूसरी फिल्में और तस्वीरें देखता रहा। यही तो होता है, किसने कहा जनाब ऐसे काम करने को। जरा अपनी सूरत को भी देखना चाहिए, अपनी सूरत को भी देखे और हम लोग अपनी हरकत को भी देखे। खूब रियों को चाहते हैं असद, आपकी सूरत को देखा चाहिए। खूब रुइयों को चाहते हैं असद, आपकी सूरत को देखा चाहिए। हजरत से सुना दिए। तो ये इस दुआ को अल्लाह ताला मुझको भी तौफीक दे मांगने की, हम सबको या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता आईन। अल्लाह ताला अपने करम से हम कामिल इस्लाह फरमा दे, अपनी रहमत का साया हम सबको नसीब फरमा दे। जुमला सिफात हमीदा अखलाक हमीदा से हमारे कुलूब को, हमारी नफूस को मुनव्वर फरमा दे और अच्छे अखलाक से हम अल्लाह ताला मुतखल्लक फरमा दे। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।